क्षितिज एक सार्थक यात्रा नए क्षितिज की ओर, जिसमें आप सभी का हार्दिक स्वागत है।
विश्व हिंदी सचिवालय यानी वर्ल्ड हिंदी सेक्रेटरियट क्षितिज और एमबीसी तथा धनदात शंभू की ओर से आप सभी स्वदेशी व विदेशी सुधी श्रोताओं का क्षितिज कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत कर रहे हैं। नमस्कार श्रोताओं, अभी अभी हमने नया साल मनाया है। 2023 की हिंदी यात्रा पुनः जोर पकड़ रही है और आगे बढ़ने के लिए चल पड़ी है। 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। कई संस्थाओं ने इस दिवस को छोटे बड़े रूप में मनाना शुरू किया है। कितने ही सम्मेलनों का आयोजन हुआ, वेबिनारों का आयोजन हुआ। ऐसे में विश्व हिंदी सचिवालय ने बड़े पैमाने पर इस कार्यक्रम को प्रस्तुत किया, जिसको अंतर्राष्ट्रीय रूप दिया जा रहा है। कार्यक्रम के मुख्य मेहमान विद्वान अनुसंधान व्यक्तित्व यानी रिसर्च पर्सन जो है प्रोफेसर हैंस वर्नर वेल्सर है। हम उनका स्टूडियो में आज स्वागत कर रहे हैं। वेल्सर जी नमस्कार।
नमस्कार गुरु जी,
और आपका स्वागत कर रहे हैं।
शुक्रिया।
इसी संबंधित एक कार्यशाला का भी आयोजन होगा 11 तारीख को, और उसमें हमारे देश के जो शिक्षक है वे उसमें भाग लेने आएंगे, और साथ में व्याकरण की कुछ टेक्निकों पर ध्यान देंगे और प्रोफेसर जी उनका मार्गदर्शन करेंगे। तो अधिक समय न लेते हुए थोड़ी सी जानकारी हम देना चाहेंगे कि प्रोफेसर जी ज्यूरिख स्विट्जरलैंड से पीएचडी कर चुके हैं। विषय जो है विष्णु पुराण में काल और इतिहास से संबंधित। एमए धर्म तुलनात्मक अध्ययन जो वन जर्मनी से कर चुके हैं, और डिप्लोमा एडवांस डिप्लोमा केंद्रीय हिंदी संस्थान दिल्ली भारत से कर चुके हैं। इसका अर्थ यह होता है कि वे बहुत पहुँचे हुए विद्वान हैं और हमारे बीच में स्टूडियो के माध्यम से मॉरिशस में पधारे हुए हैं। इनका कार्य क्षेत्र काफ़ी लंबा है और अनुभव भी लंबा है। उपसला विश्वविद्यालय में भाषा विज्ञान व भाषा शास्त्र विभाग में प्रोफेसर हैं। अन्य अनुभव हम देखेंगे कि वे यूरोपियन बोर्ड के सदस्य साउथ एशियन स्टडीज़ में, फिर लिटरेरी फोरम एजे सलाहकार के रूप में वे सदस्य हैं, फिर गर्भनाल सिग्नम पत्रिकाओं के संपादक मंडल में भी रह चुके हैं। इनके कई प्रकाशन हो चुके हैं। 2015 में भट्ट और वेस्लर फेरी आदि आदि, फिर 2014-2015 में और अभी तक इनकी पुस्तकें प्रकाशित होती रही है। इन्होंने कई सम्मान बटोरे हैं, जिनमें प्रिंसिपल कमेंडेशन रिकमेंडेशन ऑफ एकेडमी अचीवमेंट, स्कॉटिश हाई इंटरनेशनल स्कूल में सेवा के लिए अध्यक्ष प्रशस्ति प्राप्त कर चुके हैं। 2015 में विश्व हिंदी सम्मान से विभूषित हैं और जॉर्ज ग्रियर्सन अवार्ड भी प्राप्त कर चुके हैं। तो ऐसे व्यक्ति को अपने मध्य में पाकर, अपने समक्ष पाकर हम बहुत गौरवान्वित हैं। प्रोफेसर जी, हम आपसे यह जानना चाहेंगे हमारे देशवासियों के लिए, विशेष रूप से जो हमारे हिंदी भाषी है उनको कृपया आप यह बताने की कोशिश करें कि हिंदी भाषा के प्रति आपका रुझान कैसे हुआ।
हाँ, सबसे पहले आपने शुक्रगुजारी अदा करना चाहूँगा कि आपने हमको बुलाया यहाँ, और सब मिलाकर मुझे बहुत खुशी हो रही है कि यहाँ दोबारा मॉरिशस आने का मौका मिला हिंदी दिवस के अवसर पर। और मैं कहाँ तक पहुँचा हुआ हूँ ये भी एक सवाल है जो मेरे सामने हमेशा खड़ा होता हूँ होता है। मैं इसी उम्र में पहुँच गया हूँ जिसमें सम्मान वगैरह मिलते हैं और मेरे कई प्रकाशन भी हैं।
आपके कार्य के लिए ये बहुत ज़रूरी भी है।
हाँ हाँ ठीक है, यौन समझिए वो प्रोत्साहन भी मिलता है, ये भी सही भी है। और मैं चाहूँ या ना चाहूँ मैं, लेकिन मैं एक ज़िंदा मिसाल हूँ कि हिंदी सीखी जा सकती है। यानी हिंदी मेरे लिए कोई मातृभाषा नहीं है, मैंने विदेशी भाषा के रूप में हिंदी सीखी और ख़ासकर पढ़ाने से भी बहुत फ़ायदा है, क्योंकि मैं दिल में बहुत बड़ा आलसी हूँ। पर पढ़ाते वक्त मुझको मेरे अंदर में जब मैं छोटा था बहुत डर होता था कि हमारे छात्र इस तरह के सवाल पूछें जिनका जवाब मैं नहीं दे पाऊँगा। अच्छा। और इस तरह से मेरी दिलचस्पी व्याकरण में भी होने लगी। तो वो है मेरी कहानी। पहले मैंने हमारे यहाँ मैंने शुरू किया जब मैं 15 साल का लड़का था, मैंने एक किताब पढ़ी, वो हर्मन हेस्से का सिद्धार्थ के नाम से एक बहुत मशहूर नावल है। हर्मन हेस्से को नोबेल प्राइज़ भी मिला बहुत पहले, 100 साल पहले की बात है। और इसको लेके मैं मेरे अंदर में थोड़ा सा वो मैं क्या कहूँगा एक खुलेपन आने लगा कि हमारी संस्कृति हमारे यूरोप के बारे में भी कुछ है जो सीखने लायक है, मैं यूँ कहूँगा। उस वक्त मुझे इंडोलॉजी के बारे में कुछ नहीं मालूम था। बाद में पता चला कि जर्मन यूनिवर्सिटी, क्योंकि मैं शुरू से मेरी नागरिकता जर्मनी की है, अब मैं स्वीडन में हूँ।
अच्छा।
और तब इस तरह से पढ़ने का मुझको प्रोत्साहन मिला और मैंने इंडोलॉजी का विषय ले लिया जिसमें पहले संस्कृत प्रधान होता था। फिर मैंने कोर्स किया केंद्रीय संस्थान में, एडवांस डिप्लोमा कोर्स में इम्तहान भी दे दिया और फिर मेरी दिलचस्पी मेरी हिंदी की तरफ होने लगी। और पीएचडी के बाद हिंदी के साथ मेरी नौकरी भी मेरा भविष्य बना, ऐसा कह सकते हैं।
बहुत अच्छी बात है और हमारे लिए तो यह प्रेरणा की बात है कि आप जैसे लोग हिंदी भाषा को अंतर्राष्ट्रीय भाषा बनाते हैं। और मुझे खुशी होती यदि आप ये बोल पाते कि अभी जो हमारी हिंदी भाषा है विश्व स्तर पर कहाँ तक पहुँची है।
हाँ, आजकल विश्व भाषा हिंदी का नाम काफ़ी प्रचलित है और बहुत लोग कोशिशें करते हैं कि हिंदी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आगे बढ़े। एक तो ये है प्रवासी समाज में 3 करोड़ प्रवासी भारतीय माना जाता है कि 3 करोड़ हैं और में से हिंदी भाषी हिंदी मातृभाषी बहुत हैं। कितने हैं वो भी अनुमान का सवाल है, मैं ठीक से अनुमान नहीं कर पाता। पर इनके लिए वे लोग कुछ और कुछ लोग बहुत साल पहले बाहर चले गए और अभी तक अपनी जुबान पालते रहे। कुछ लोग अभी नए नए आए हैं, जैसे इंग्लैंड में और अमेरिका में भी नई पीढ़ियां आ रही हैं, तो वो एक ग्रुप है। दूसरा ये है हम मेरे जैसे विदेशी सीखने वाले, और वही चल रहा है जिसके साथ जो अरबी के साथ भी होती है, जो चीनी के साथ होती हैं, यानी मातृभाषीय बोलने वालों के अलावा और लोग सीख लेती हैं वही जुबान। जैसे आपको मालूम है चीनी के साथ चीन सरकार बहुत ज़बरदस्ती से एक विदेशी सांस्कृतिक राजनीति आगे चला रही है, जो कन्फ्यूशियस इंस्टीट्यूट के नाम से पूरी दुनिया में इस तरह के इंस्टीट्यूट्स होते हैं। विश्व भाषा हिंदी अगर सचमुच वो मान लीजिए संयुक्त राष्ट्र संघ की भाषा बननी है, अभी कुछ हद तक है, वैसे वेबसाइट भी है सब कुछ है संयुक्त राष्ट्र संघ के अंदर में, पर अगर सही मायने में जिस तरह से अरबी और चीनी संयुक्त राष्ट्र संघ की औपचारिक भाषाएं बनी, अगर हिंदी यहाँ तक पहुँचनी तो फिर और भी कदम ज़रूर करने चाहिए। और मैं ये कहूँगा कि भारत अब तो महाशक्ति या तो बन चुकी है या बन रही है, तो उसके साथ वही हिम्मत के साथ एक राजनीति बननी चाहिए। और भारत के बाहर हिंदी बोलने वालों की कमी नहीं है, जैसे यहाँ मॉरिशस में है, फिजी मशहूर है, दक्षिण अमरीका में गुयाना सूरीनाम में है और त्रिनिदाद में ख़त्म हो चुकी है हिंदी। और वो बहुत ज़रूरी है कि इन लोगों को किसी तरह से प्रोत्साहन मिले कि हम साथ में हैं, कि वो न सिर्फ भारत की ज़ुबान है कि बाहर के लोगों की भी ज़ुबान है, प्रवासी लोगों की, और इसके अलावा और भी हिंदी प्रेमी हैं जो प्रवासी समाज के नहीं हैं, फिर भी हिंदी से इतना प्रेम है कि सीख लेते हैं, क्योंकि बिना प्रेम कोई हिंदी कोई जुबान नहीं सीखेगा
जब तक श्रद्धा ना हो हृदय में
जी। और मैं मानता हूँ जैसे स्वीडिश समाज में या ये वो पूरी यूरोप के लिए सही है, आजकल इस संस्कृति का आकर्षण तो है, बॉलीवुड फिल्में प्रचलित होती हैं, योग दर्शन में कुछ लोग दिलचस्पी लेती हैं, और किसी तरह से लोग आजकल जिस जब हम वैश्वीकरण का की बात उठाते हैं तो पूरी दुनिया में सामने एक तरह से कड़ी होती है, तो इस तरह से कुछ लोगों को प्रोत्साहन भी मिलता है कुछ हिंदी सीख ले, और वो कितनी गंभीर है वो अलग सी एक अलग सा एक सवाल है। पर बहुत लोग वो मैं देखता हूँ हमारे कोर्सेस में एक दो साल तक हिंदी पढ़ लेते हैं आसानी से, या कुछ हो सकता है कि दूसरी नौकरी करते हैं, दूसरी किस्म की पढ़ाई करते हैं, पर साथ में वो भी करते हैं, और हम चाहे या ना चाहे हम हिंदी के राजदूत बन जाते हैं इसके साथ।
और मैं सोचता हूँ कि यह ज़रूरी नहीं है कि ये हिंदी पढ़ेंगे तो हमें हिंदी की नौकरी मिलेगी ही, अपने धर्म अपनी संस्कृति और एक भाषा के रूप में दुनिया को जानने के लिए भारत को जानने के लिए कम से कम अगर हिंदी पढ़ लेंगे तो एक हमारे लिए प्लस हो जाती है, एक भाषा ज़्यादा हो जाती है।
हाँ, वो एक भाषा ज़्यादा हो जाती है वो एक बात है, पर दूसरी बात यह है हम आजकल जिसको कहते हैं आंतर सांस्कृतिक संपर्क, इंटरकल्चरल कम्युनिकेशन महत्वपूर्ण हो जाते हैं वैश्वीकरण के साथ साथ। हमको समझना चाहिए कि हमारे सोचने इंसान हम सब लोग हैं, फिर भी सोचने के ढंग में दुनिया को देखने के ढंग में फर्क होता है, और वो हिंदी के साथ हिंदी पढ़ते पढ़ते इसके लिए एक खुलेपन बन जाता है बच्चों के अंदर में। वो मैं देखता हूँ हमारे बच्चे जो हमारे सामने हैं, और बाद में जो हिंदी के साथ नौकरी नहीं मिलती पर वो भी जॉब मार्केट में एक हिस्सा है आंतर सांस्कृतिक संपर्क,
बिल्कुल
कुछ ना कुछ मिलते हैं, वो कम से कम मेरा अनुमान है।
अच्छा प्रोफेसर जी, ये भाषा तो विश्व में फैलती ही जाती है, बोलते हैं भाषा बहता नीर है, तो मैं यह जानना चाहूँगा आपने भारत में अपनी पढ़ाई की है, अभी स्वीडन में आप छात्रों के साथ काम कर रहे हैं, उन्हें पढ़ा रहे हैं, शिक्षण दे रहे हैं, तो आप अगर एक तुलनात्मक दृष्टि से मान लिया जाए बोलेंगे तो आपको क्या अंतर दिखाई देता है भारतीय छात्र और स्वीडन के छात्रों में?
स्वीडन के छात्र तो शौक से हिंदी पढ़ लेते हैं, इनको दिलचस्पी है, मेहनत करने के लिए तैयार हैं, इनके सामने एक नौकरी आमतौर पर एक स्पष्ट रूप से नहीं आती, फिर भी जब मेहनत करते हैं तो सचमुच मेहनत करते हैं वो। हिंदुस्तान में जो लोग हिंदी पढ़ते हैं वो अध्यापक बन सकते हैं या दूसरा कुछ काम मिलने की काफ़ी संभावना है, वैसे समाज में बहुत आदर नहीं दिया जाता है, वही परेशानी है हिंदुस्तान में, बहुत अक्सर हिंदी पढ़ने वाले छात्र वही हैं जो किसी साइंस में इनका प्रवेश में नहीं होता तो फिर हिंदी ले लेते हैं, वो भी खेद की बात है, ज़रूरी नहीं है, फिर भी मैं इसको ख़राब नहीं मानता, क्यों नहीं करने दो, पर इस तरह के छात्र हमारे यहाँ नहीं के बराबर है लगभग, तो वे लोग जो आते हैं इनकी शायद इनकी समझ में नहीं है कि भाषा सीखने में हमको लगातार कम से कम थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ती है,
कोई भी काम करने से पहले मेहनत
किसी भी विषय में वही करनी है, पर ज्यादातर वही होता है कि लोग मेहनत करते हैं।
अच्छा, आपने हिंदी से संबंधित हमारे प्रश्नों पर काफी अच्छी तरह से विस्तार पूर्वक समझाया, अंत में समय बहुत जल्दी चला जाता है, अंत में हम यही पूछना चाहेंगे कि हमारे देशवासियों के लिए हिंदी को लेकर आप क्या संदेश देना चाहते हैं?
मालूम नहीं कि मैं संदेश देने वाला एक सक्षम आदमी हूँ, पर मैं ये कहूँगा कि यहाँ हिंदी कमज़ोर होती जा रही है, वो मैंने पढ़ा, मैंने लोगों से सुना भी, लोग आधुनिकीकरण अंग्रेजी के साथ और फ्रेंच के साथ जोड़ देते हैं, इसकी ज़रूरत नहीं है, मैं यूँ मानता हूँ हर किसी ज़ुबान के अंदर में आधुनिकता है, और जो भी ज़ुबान हो वो यहाँ मॉरिशस के सांस्कृतिक खजाने में आ जाती है, और इसको आगे बढ़ानी है किसी ना किसी तरह से, वो मुझे बहुत ज़रूरी लगती है। मैं यहाँ किसी तरह से प्रचार नहीं करना चाहूँगा, पर वो नई पीढ़ी को ये समझनी चाहिए कि ये ज़ुबान हमारी है, ना सिर्फ नाना नानी दादा दादी की है, ये हमारी है। उसमें जो भी हमारी समस्याएं हैं उसमें के बारे में लिख सकते हैं, उसमें को अभिव्यक्त कर सकते हैं, वो ज़रूरी है।
बहुत अच्छा, आज आप हमारे स्टूडियो में आए, हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद देंगे, आभार प्रकट करना चाहेंगे कि आप उतने दूर से स्वीडन से आकर हमारे देश में मॉरिशस में हिंदी के प्रचार प्रसार के लिए हमारे शिक्षकों को हमारे बच्चों को आप प्रेरित कर रहे हैं, तो आपके लिए
कोशिश करते हैं।
हाँ बिल्कुल, बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद, और हम यही कहेंगे कि आपके जीवन में भविष्य में शुभकामनाएं हो।
शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया, आभारी हूँ गुरु जी आपके लिए।
अच्छा, तो श्रोतागण आज का हमारा कार्यक्रम यहाँ पर समाप्त होता है। हम मानते हैं कि बहुत कम समय है, फिर भी आपको बहुत सारी जानकारियाँ प्राप्त हुई होगी। एक और कार्यक्रम के लिए हम आपसे आपसे विनती करेंगे कि इंतज़ार करें, हम फिर एक दूसरे कार्यक्रम लेकर यहाँ पर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।